أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أصول الدين در تفسير الميزان میں ہماری بحث توحید پر پہنچی تھی. توحید کی بحث میں ایک جو اہم ترین بحث ہے وہ خود توحید سے کیا مراد ہے، یہ والی بحث ہے. یہ بحث معمولاً قدیم کتابوں میں اگر جایا جائے اور دیکھا جائے، چاہے وہ فلسفی کتابیں ہوں یا کلامی، یہ بحث معمولاً نظر نہیں آتی. کہ توحید سے کیا مراد ہے جب خداوند متعال کی توحید کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. لیکن جناب ملا صدرہ کے بعد یہ بحث بہت زیادہ اہمیت کی حامل واقع ہوئی، اور عرفاء نے بھی اس بحث کو کافی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے. توحید جو ہے وہ وحدت سے بنا ہے، لفظ وا، حی، حا اور دال، وحدہ، وحدت، اور اسی سے توحید نکلا ہے. فلسفے میں پھر مختلف اقسام کی جاتی ہیں وحدت کی، کہ وحدت یا حقیقی ہے یا حقیقی نہیں ہے. وحدت اگر حقیقی ہے تو حقہ حقیقیہ ہے یا نہیں ہے. اس قسم کی اقسام ہیں مختلف. میں تمام اقسام کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا، جو بحث ہماری مد نظر ہے فقط اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. وحدت کی ایک قسم جو بیان کی جاتی ہے وہ وحدت یا عددی ہوتی ہے یا غیر عددی. عددی یعنی عدد سے ہے، وحدت عددی، عدد والی وحدت. اور ایک وحدت ہے کہ جو عددی نہیں ہے، لیکن ہے حقیقتاً وحدت لیکن عدد میں شمار نہیں ہوتی، وحدت عددی نہیں ہے. یہ تقسیم اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ابھی معلوم ہوگا کہ اگر ہم اس تقسیم کو صحیح نہ سمجھے اور خدا کو ہم نے واحد کہا اور غلط وحدت کا معنی کر دیا، تو گویا کہ ہم معرفت اللہ میں، صحیح معرفت میں نہیں ہیں. وحدت عددی اور غیر عددی سے کیا مراد ہے؟ تھوڑا دقت کیجیے گا میرے ساتھ، مطلب کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ممکن ہے آپ میں سے اکثر افراد جو ہیں وہ یہ بات پہلی دفعہ سن رہے ہوں، اور جو فلسفہ پڑھتے ہیں اور علم کلام کی کتابوں کا مطالعہ ہے ان کا، وہ شاید یہ بحثیں پہلے پڑھ چکے ہوں. وحدت عددی اس وحدت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ایک چیز واحد تو کہلاتی ہے لیکن اس کے لیے ثانی فرض کیا جا سکتا ہے، اس کا دوسرا فرض کیا جا سکتا ہے، اس کا تیسرا فرض کیا جا سکتا ہے. مثلاً آپ اگر گلاس جو ہے، مثلاً جو علامہ نے یہاں پر تعبیر استعمال کی ہے میں اسی سے استفادہ کرتا ہوں، پھر مزید اور مثالیں بھی دیتا ہوں. گلاس میں اگر آپ پانی ڈالتے ہیں تو کیا کہیں گے ہم یہاں پر؟ ہم کہیں گے کہ یہ واحد ہے، گلاس ایک ہے، پانی ایک ہے. لیکن اگر یہ پانی میں مختلف گلاسوں کے اندر ڈال دوں تو اب वो के जो वाहिद था वो अब कसीर बन जाएगा, कसरत में बदल जाएगा। पहले एक गिलास था और उसमें एक ही पानी था, लेकिन जब बाकी गिलासों का इजाफा किया गया और पानी का इजाफा किया गया तो यहां कहेंगे कि अब ये पानी कसीर हैं, अब ये पानी जो है वो कसरत रखते हैं, या गिलास जो है वो कसरत रखते हैं। ऐसे ही मसलन आप देखें कि आपने इज्दिवाज की और खुदा ने आपको पहले साल औलाद नसीब की, एक बेटा हुआ आपका या एक बेटी हुई आपकी, तो अब यहां पर एक का इतलाक हो रहा है कि एक बेटा एक बेटी। खूब, हम जो कह रहे हैं कि आपका एक बेटा है तो आया दूसरा हो सकता है या नहीं हो सकता? खूब, हो सकता, मुश्किल नहीं है, दूसरा बेटा होगा तो अब एक का इतलाक नहीं होगा, कहेंगे आपके दो बेटे हैं, एक कसरत में बदल जाएगा। बस वाहदत अददी में जो वाहिद होता है उसके मुकाबले में दूसरे का फर्ज करना मुमकिन है। ये मैं मुमकिन की ताबीर क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि वाहदत अददी में वाहिद के मुकाबले में दूसरा होना वाजिब व जरूरी नहीं है। कि वाहदत अददी उसको कह लें, कहेंगे कि जिसका दूसरा भी हो, ना, दूसरा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर फर्ज कर लेना ही मुमकिन हो तो वाहदत अददी कहलाएगी। मसलन कुछ शरायत ऐसे थे इंसान के पास कि मसलन मैं एक सादा सी मिसाल देता हूं, जहन करीब करने के लिए है, मजीद मुमकिन है आप मुझसे बेहतर जो है वो मिसाल जो है वो ढूंढ के ले आए। मैं आपको इसकी मिसाल करीब करने के लिए एक मिसाल देता हूं अपनी तरफ से। मसलन आप देखते हैं, जैसे अभी मिसाल दी है आपको इज्दिवाज की, कि मियाँ बीवी शादी करते हैं, उनको एक औलाद नसीब होती है। बाद में जो असबाब खुदा ने खिलकत के लिए माँ बाप में रखे हैं, एक हादसे की शक्ल में वो असबाब खत्म हो जाए, ला इलाज हो जाए मुमकिन तौर पर, दूसरी औलाद आना मुमकिन ही ना हो वाकई में, चूंकि असबाब खत्म हो गए हैं, तो अब ये जो एक बेटा रह गया है, दुरुस्त है कि ये एक है, लेकिन एक के मुकाबले में दूसरा फर्ज करना मुमकिन है, अगरचे खारिज में नहीं आ सकता, खारिज में मुश्किल पैदा हो गई है, ये हमेशा एक ही रहेगा लेकिन दूसरे का फर्ज करना मुहाल नहीं है। इस किस्म की वाहदत को वाहदते अददी कहा जाता है। हम जिस वाहदत से आशना हैं वो सब के सब वाहदते अददी हैं। हम जिसको भी वाहिद कहते हैं, जिसको भी एक कहते हैं, वो अददी माना में कहते हैं। मैं कहता हूं इसका एक बेटा है, यानी वाहदते अददी के माने में कह रहा हूं, मेरे घर एक टेलीविजन है, वाहदत अददी के माना में कह रहा हूं, और इस किस्म की बहुत सारी मिसालें आप जितनी भी अपनी जिंदगी में ले लें, इसको वाहदत अददी कहते हैं। क्यों? इस वजह से कि इस वाहिद के मुकाबले में उसका दूसरा तीसरा चौथा फर्ज करना जो है वो मुमकिन है, और बाज़ औक़ात होता है उसका दूसरा, बाज़ औक़ात खारिज में नहीं आ सकता, लेकिन अकलन फर्ज करना जो है वो मुमकिन होता है। यह है वाहदत अददी। इसके मुकाबले में वहदते गैर अददी है, यानी ऐसी वहदत के जो अदद में नहीं आती, अददी नहीं कहलाती, बल्कि वो हक्का हकीकिया कहलाती है। क्या है वो? ऐसा वाहिद के जिसका सानी और दूसरा फर्ज करना मुहाल हो, जो जाए के खारिज में हो, खारिज की तो असलन बाद का मरहला है, उसका सानी फर्ज करना मुहाल है, इसको कहते हैं वहदते गैर अददी, वहदते हक्का हकीकिया। खूब, कैसे? मसलन देखें, वहदते अददी में क्या होता है, एक चीज अपना वजूद में महदूद होती है। मसलन किताब एक से दो कब बनती है, कि जब पहली किताब का वजूद खत्म हो जाए तो उस वक्त दूसरी किताब के वजूद की नौबत आती है और दूसरी किताब वजूद में आती है। लेकिन अगर एक ऐसी चीज के जो अपने वजूद में लामुतनाही हो, असलन कोई हद ही ना रखती हो, खत्म होने का नाम ही ना ले उसका वजूद, लामुतनाही लामहदूद हो, दूसरा कैसे आ सकता है? असल मुमकिन नहीं है कि दूसरा फर्ज किया जाए, चूंकि ये शय जिसको हम वाहिद कह रहे हैं ये लामुतनाही है अपने तमाम एतबार से। दूसरा तो तब आएगा ना मुकाबिल में कि जब उसके वजूद में हद आ जाए, जब उसका वजूद महदूद हो जाए, तब दूसरे की नौबत आएगी। लेकिन एक ऐसी हस्ती है कि जो लामुतनाही है, एक ऐसा वाहिद है जो लामुतनाही है, उसकी हद ही नहीं है किसी एतबार से, उसको महदूदियत रखता ही नहीं है वो, तो जब वो महदूदियत ही नहीं रखता, उसका वजूद ही लामुतनाही है, खत्म होने का नाम नहीं लेता, तो उसके मुकाबले में दूसरा कैसे फर्ज किया जा सकता है? असल फर्ज मुहाल है, क्योंकि अगर आप फर्ज करेंगे तो वो महदूद हो जाएगा, लामुतनाही नहीं रहेगा। बस ऐसा वाहिद कि जिसके मुकाबले में दूसरा फर्ज करना मुहाल हो, उसको कहते हैं वहदते गैर अददी, वहदते हक्का हकीकिया, हक्कतुन हकीकिया। ये माना किया जाता है वहदते अददी और वहदते गैर अददी का। वहदते अददी में महदूदियत पाई जाती है और वहदते गैर अददी के अंदर लामुतनाही होना पाया जाता है। ये खसूसियतें हैं इन दो अकसाम की। तो अब सवाल, हम जो कहते हैं अल्लाह वाहिद है, अल्लाह एक है, किस माना में लेते हैं? अल्लाह एक है यानी दूसरा नहीं है उसका। खूब, दूसरा नहीं है, क्या माना है इसका दूसरा नहीं है? आया दूसरा उसके मुकाबले में फर्ज ही नहीं किया जा सकता, या ना दूसरा हो सकता है लेकिन खारिज में मुहाल है, क्योंकि बाजों की तौहीद ऐसी है, जैसा कि अर्ज किया कि मुल्ला सदरा से पहले जितने भी फलासफा गुजरे हैं, मुतकल्लिमीन गुजरे हैं, वो खुदा की वहदत को वहदत अददी मानते थे। यानी क्या मुराद? यानी कहते खुदा एक है, दो नहीं है, उसका शरीक नहीं है। क्यों शरीक नहीं है? ना ये कि उस शरीक को फर्ज करना मुहाल है, ना, कहते हैं शरीक नहीं है, क्यों? क्योंकि खारिज में शरीक का होना मुहाल है, क्योंकि अगर दो खुदा हो गए तो क्या हो जाएगा? फसाद आलम लाजिम आएगा। अगर दो खुदा हो गए, हर्ज व मर्ज लाजिम आएगा। अगर दो खुदा हो गए तो कायनात जो है वो चल नहीं पाएगी। यूं आकर बयान करते थे, क्योंकि खारिज में मुश्किल पेश आती है, खारिज में इंसान अगर दो खुदा हो गए तो फसाद लाजिम आता है, बस खुदा को एक होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए, बस खारजी एतबार से वो देखते थे। खुदा का शरीक नहीं है, खुदा का सानी नहीं है, खारिज के एतबार से है फकत, या असलन फर्ज करना मुहाल है? عرض کیا ملا صدرہ سے پہلے جتنے فلاسفہ و متکلمین موجود تھے سب وحدت عددی سمجھتے تھے، اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مانتے تھے اس کو، لیکن شریک نہیں ہے، ایک ہے، یعنی کس اعتبار سے؟ آیا شریک کا فرض کرنا محال ہے اس لیے نہیں ہے، یا نہ فرض کرنا تو مشکل نہیں رکھتا لیکن خارج میں اگر شریک آ جائے تو محال لازم آتا ہے، اگر خارج میں آنے سے محال لازم آتا ہے اس دلیل کو ملا قرار دیں کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہم وحدت عددی کے قائل ہیں، خدا ایک ہے اور اس کا شریک نہیں ہے، کیونکہ شریک فرض ہی نہیں کیا جا سکتا، عقل اصلا تصور نہیں کر سکتی شریک ہونے کا، اس کو کہتے ہیں یہ حقائے حقیقیہ ہے، یہ وحدت حقیقی ہے، اصل میں یہ اعتقاد درست ہے خدا کو ایک کہنے میں، قرآن اور روایات اس وحدت کو بیان کر رہی ہیں، لیکن ہمارے فلاسفہ اور متکلمین نے نہیں معلوم کیا وجہ بنی کہ ان مطالب کے ہوتے ہوئے بھی وحدت حق حقیقیہ کو صحیح طور پر تصور نہیں کر سکے اور خدا کو واحد مانتے تھے بمعنی عددی. مثلا دیکھیں علامہ طباطبائی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 104 میں یوں فرماتے ہیں، وَلِذَلِكَ تَرَى الْمَأْثُورَ مِنْ كَلِمَاتِ الْفَلَاسِفَةِ الْبَاحِثِينَ فِي مِصْرِ الْقَدِيمِ وَالْيُونَانِ وَالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ يُعْتِي الْوَحْدَةَ الْعَدَدِيَّةِ، کہ کلمات فلاسفہ کی طرف اگر آپ رجوع کریں جو نقل ہوئے ہیں، وہ مصر قدیم سے چاہے مرتبط ہوں، یونان کے فلاسفر ہوں، اسکندریہ کے فلاسفر ہوں، یا ان کے علاوہ جو بعد میں آنے والے ہوں، وہ کیا ہے؟ وحدت عددی کو بیان کرتے تھے. حتی صرح بها مثل الرئیس ابی علی ابن سینا فی کتاب الشفا، حتی بو علی سینا جیسا نابغہ انسان و فلسفی وہ صراحت سے بیان کرتا ہے اپنی کتاب شفا کے اندر کہ وحدت عددی رکھتا ہے خدا. ولا علی هذا المجرى یجری کلاما کلام غیرہ ممن بعدہ الی حدود الالف من الحجرۃ النبویہ، 1000 سال تک ہمارے علماء وحدت وحدت عددی سمجھتے تھے خدا کے مورد میں. اما اہل الکلام من الباحثین فاحتجاجاتہم علی التوحید لا تعطی ازید من الوحدت العددیت ایزن، یہ تو حال تھا فلاسفہ کا جو دقت عقلی میں بیشتر ہیں متکلمین سے، زیادہ ہیں متکلمین سے، وہ وحدت عددی بیان کرتے رہے. اہل کلام جب توحید کے استدلالات بیان کرتے تھے تو وہ وحدت عددی سے زیادہ کچھ نہیں رکھتے تھے، اسی کو بیان کرتے تھے. فی عین ان ھذہ الحجج مأخوذہ من الکتاب العزیز عامتاً، باوجود اس کے کہ یہ دلیلیں جو ہیں وہ قرآن کے اندر عموماً پائی جاتی ہیں. بس یہ وحدت ملا صدرہ سے پہلے وحدت حق حقیقیہ کی طرف جو ہے وہ توجہ انتہائی کم تھی، اس کا مطلب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. خوب علامہ کی کچھ عبارتیں پڑھتے ہیں جو مطلب خارج میں اردو میں بیان کر دیا ہے میں نے، اسی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 88 کے اندر علامہ یوں بیان کرتے ہیں، والقرآن ينفي في عالي تعليمه الوحدة العددية عن الإله جل ذكره، قرآن اپنی تعالیم عالیہ کے اندر، اپنی بلند تعلیم کے اندر وحدت عددی کو خدا سے نفی کرتا ہے. فَإِنَّ هَذِهِ الْوَحْدَةِ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِتَمَيُّزِ هَذَا الْوَاحِدِ مِنْ ذَلِكَ الْوَاحِدِ بِالْمَحْدُودِيَّةِ الَّتِي تَقْهَرُهُ वहदत अददी किसे कहते हैं, निशानी क्या है हमारे पास, मिलाक क्या है वहदत अददी को पहचानने का। फरमाते हैं ये वहदत अददी कब बनती है कि उस मौरिद में हमें पता चलता है कि जब हम कहें कि ये वाहिद दूसरे वाहिद से जुदा होता है महदूदियत के साथ, कि जो महदूदियत गलबा रखती है इस वाहिद के ऊपर, यानी महदूदियत आती है तो दूसरे फर्द की जगह बनती है और वो खारिज में आती है। वल मुकद्दरिया अल्लती तगलिबहू, ये भी महदूदियत ही के माना में है। मिसाल वालिक अल्लामा फिर मिसाल देते हैं इस वहदत अददी को समझाने के लिए। फरमाते हैं मा उल हौज इजा फरकनाहु फी आनियतिन कसीरा, अगर हम एक होज के पानी को मुख्तलिफ बर्तनों में जुदा करते हैं, कान मा उ कुल इना इन मा अन वाहिदन गैरा मा अल वाहिद अल्लज़ी फी अना अल आखर, तो हर बर्तन का पानी वाहिद कहलाता है। मसलन आपने मुख्तलिफ गिलासों के अंदर पानी डाल के रख दिया है, या मुख्तलिफ बर्तनों में पानी डाल के रख दिया है, हर बर्तन का पानी वाहिद कहलाएगा अपनी जात के अंदर। लेकिन ये वाहिद पानी जुदा है, मुतमायज है, फर्क करता है दूसरे पानी से कि जो दूसरे बर्तन के अंदर पाया जाता है। गैर अल मा अल वाहिद, ये पानी गैर है उस पानी वाहिद का कि अल्लज़ी फी इन फिल इना अल आखर, जो दूसरे बर्तन में है। व इन्नमा सारा मा उन वाहिदान, इन्नमा सारा मा अन वाहिदन यतमय्यज़ु अम्मा फिल आखर लिकौने मा फिल आखर मसलूबन अनहु गैर मुज्तमिउन माहू। कहते हैं ये जो एक पानी है ये दूसरे पानी से जुदा हुआ है, कैसे, क्या खसूसियत बनी कि ये जो है वो उससे जुदा हुआ है। फरमाते हैं उसकी वजह ये है कि लेकौने माफिल आखरे मसलूबन अनहो, क्योंकि दूसरे पानी में जो खसूसियत व महदूद जो चीज पाई जाती है वो पहले के अंदर नहीं पाई जाती, और वो खसूसियत पहले के अंदर जमा भी नहीं है। ये इस तरीके से, यानी वो बर्तन चूंकि एक महदूद बर्तन के अंदर है, पानी का वजूद वहीं पर महदूद हो गया, लिहाजा दूसरा पानी जो है वो दूसरा कहलाता है, क्योंकि पहला पानी जो है वो अपनी वजूद की महदूदियत में मौजूद है। अगर ये पानी लामतनाई होता तो दूसरा पानी असलन तसव्वुर नहीं कर सकते, दूसरा पानी हो भी नहीं सकता था। अब चूंकि उसकी एक हद आ गई है तो दूसरे पानी की जगह बनी है। इसी तरीके से अल्लामा जो है इसको मिसाल देते हैं इंसान के साथ कि उसी को आप मुताला करेंगे इंशाल्लाह, चूंकि मतलब वाजह हो गया है, उसको अगर आप मुताला करेंगे तो मतलब आपके लिए वाजह और रोशन होगा। फिर इसके बाद अल्लामा इसी मतलब को तसलसल देते हुए मतलब को यूं आगे बढ़ाते हैं इसी जिल नंबर 6 के अंदर ही। फरमाते हैं कि इबारत कहाँ से, यहाँ से शुरू करते हैं कि फरमाते हैं कि लम ततसव्वर फी हक ही वहदतुन अददिया वला कसरतुन अददिया, के खुदावंदे मुताल के मौरिद में असलन वहदत अददिया काबिल तसव्वुर नहीं है और ना ही कसरत अददी, ये काबिल तसव्वुर नहीं है। मैं एक इबारत देख रहा हूं जिसमें इस मतलब को अच्छे तरीके से इन्होंने बयान किया है, कर जल्दी से मुझे अलमीजान में ये मतलब मिल जाए। माजरत चाहता हूं कि मैं इस इबारत को नोट नहीं कर पाया था। खूब فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس قرآن میں آیا کہ کون سی آیات ہیں کہ جو وحدت عددیہ کی نفی کرتی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہ آیات کہ جو جہاں پر واحد کا لفظ آیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قہار کا لفظ بھی آیا ہوا ہے، واحد کا قہار کے ساتھ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے مورد میں وحدت وحدت عددی نہیں ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے. مثلا دیکھیں یہاں پر کیا فرمایا، سورہ رعد کی آیت نمبر 16 میں دیکھیں تو وہو الواحد القہار، سورہ یونس یوسف کی 40 نمبر آیت میں دیکھیں تو وہاں بھی اسی طریقے سے آیا ہے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اسی طریقے سے سورہ صاد آیت نمبر 65 کے اندر یوں ارشاد ہو رہا ہے، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، پھر یہاں پر قہار آیا ہوا ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 4 کے آخر میں بھی یوں ارشاد ہو رہا ہے کہ هو اللہ الواحد القہار. علامہ یہیں سے یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ قہار کی صفت کو واحد کے ساتھ نقل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی وحدت وحدت عددی نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وحدت عددی میں حد کا ہونا ضروری ہے، یہ حد غلبہ رکھتی ہے واحد کے اوپر. یعنی پانی جو واحد ہے ایک برتن میں، حد آ کر غلبہ رکھتی ہے، پانی کو مقہور اور مغلوب بناتی ہے تاکہ دوسرے پانی کی جگہ بنے. بس حد جو ہے وہ قاہر ہے واحد پانی کے اوپر، اس واحد پر. بس چونکہ حد قاہر بنتی ہے اور واحد جو ہے جس کی حد ہے وہ مقہور کہلاتا ہے، اور آیات قرآنیاں فرما رہی ہیں کہ خدا واحد قہار ہے، خدا غالب مطلق ہے، اس کے اوپر کوئی غلبہ نہیں رکھ سکتا، خدا مغلوب نہیں ہو سکتا، خدا مقہور نہیں ہو سکتا. بس یہ قہاریت کی صفت یہ بتا رہی ہے کہ خدا کی صفت جو ہے وہ، خدا کی وحدت جو ہے وہ وحدت غیر عددی ہے، وحدت حقائق حقیقیہ ہے. دیکھیں اسی جلد نمبر 6 میں اور صفحہ 88 اور 89 کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں والآیات بسیاقها كما ترى تنفي كل وحدة مضافة إلى كثرة مقابلة لها. آیات کہ اگر سیاق کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آیات ہر اس وحدت کی نفی کر رہی ہے کہ جس کے مقابل میں کثرت پائی جاتی ہو، سواء کانت وحدتا عددیہ، چاہے وہ وحدت عددی کی صورت میں ہو، او کانت وحدتا نوعیہ او جنسیہ او وحدتا کلیہ. یہ کوئی بھی وحدت ہو، وحدت جنسی، وحدت نوعی، وحدت کلی کیا ہے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہم چونکہ وحدت عددی پہ بحث کر رہے ہیں پھر مطلب جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ کیوں، وَإِذْ كَانَ تَعَالَى لَا يَقْهَرُهُ شَيْءٌ فِي شَيْءٍ أَلْبَتَّةً مِنْ ذَاتِهِ وَلَا صِفَتِهِ وَلَا فِعْلِهِ. خدا جو ہے اس پر کوئی بھی چیز غلبہ نہیں رکھتی، نہ تو اس کی ذات کے اعتبار سے، نہ تو اس کی صفت کے اعتبار سے، نہ تو اس کے فعل کے اعتبار سے کوئی بھی چیز اس پر غلبہ نہیں رکھتی، بلکہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، بلکہ وہ ایسا قاہر ہے جو ہر چیز کے اوپر ہے. فَلَيْسَ بِمَحْدُودٍ فِي شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، اور وہ किसी भी चीज के अंदर महदूद नहीं है। फहुवा मौजूदुन ला यशूबहु अदमुन, वो ऐसा मौजूद है कि जिसमें अदम नहीं पाया जाता। वहक्कुन ला यअरिजुहु बुतलानुन, वो ऐसा हक है जिसमें बुतलान नहीं पाया जाता। वहुवल हय्यु ला युखालितुहु मौतुन, वो ऐसा जिंदा है हयात रखने वाला है जिसमें मौत नहीं पाई जाती। वल अलीमु ला यदुब्बु अलैहि जहलुन, वल काहिरु ला यगलिबुहु अज्जुन। इस किस्म का ये हम खुदावंदे मुताल की सिफात पाई जाती हैं कुरान में। बस इन सिफात के होते हुए हम नहीं कह सकते कि खुदा की वहदत वहदते गैर अददी है, बल्कि खुदा की वहदत जो है वो वहदते हक्काए हकीकिया है। इसके बाद जो है वो अल्लामा तबातबाई रिवायात को नकल करते हैं। सबसे पहली शख्सियत जिसने वहदत गैर अददी को बयान किया है कुरान के बाद, वो है मौला अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत। अपने नुरानी कलेमात के अंदर तौहीदे हकीकी का तआरुफ करवाया है। अगर इंसान इमाम के कलाम की तरफ रुजू करे तो वाकईन इंसान जो है वो हकीकी तौहीदे खुदा और मारिफत खुदा को हासिल करता है। आप देखें, एक रिवायत शेख सदूक अलै रहमा की किताब अत-तौहीद में मौजूद है सफा 83 पर, और मीज़ान में अल्लामा ने जिल्द नंबर 6 में रिवायात की बहस में इसको नकल किया है कि शुरैह बिन हानी कहता है कि जंगे जमल के दौरान एक शख्स आया, अराबी था वो, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास आकर कहता है कि आया खुदा एक है। लोग जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा, भाई जंग हो रही है, कत्लो गारत शुरू है, और तुम्हें अभी ये किन सवालों की पड़ गई है, तुम आकर इस किस्म के सवाल करने लग गए हो। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इंतहाई खूबसूरत जुमला बयान किया, और इबरत है हम और दर्स है हम सब के लिए, और के इल्म की और मारफत खुदा हासिल करने की अहमियत की तरफ तवज्जो दिला रही है कि कितनी गंभीर हालत है, कितनी बुरी हालत है। लेकिन फिर भी फरमाते हैं कि इसको सवाल करने दो। और इस तरह फरमाते हैं, फकाल अमीरुल मोमिनीन दउहो, छोड़ दो इसको। फइन्नल्लज़ी युरीदुहुल अराबी, ये इंसान जिस चीज का इरादा रखता है, हुवल्लज़ी नुरीदुहु मिनल कौम, हम वही चीज इसी कौम से चाहते हैं कि जिनसे जंग कर रहे हैं, यानी मारिफत खुदा पर हमारी जंग हो रही है, तौहीद के ऊपर हमारी जंग हो रही है। हमारे जंग का मकसद ये है कि हम खुदा को पहचान सकें, खुदा की तौहीद का जो है वो प्रचार कर सकें। सुम्मा काला अलैहिस्सलाम या आराबी, इमाम ने फिर फरमाया, आराबी सुनो आप मेरी बात। इन्नल कौला फी अन्नल्लाह वाहिदुन अला अरबाते अक्सामिन, खुदा को जब हम वाहिद कहते हैं तो वाहिद चार किस्म के हो सकते हैं। फवजहान मिनहा ला यजूजान अल्लाह ताला, दो किस्म की वहदत ऐसी हैं जो खुदा के लिए मुमकिन नहीं हैं। ववजहान यस्बतान फीहे, और दो वजह दो किस्में वहदत की ऐसी हैं जो खुदा के लिए साबित हैं और उसमें मुश्किल नहीं है। अम्मल्लज़ाने ला यजूजान अलैहे फकौलुल काइले वाहिदुन यक्सुदु बिही बाबुल अदाद फहाजा ला यजूज, वो वहदत के जो जायज नहीं है खुदा के लिए वो ये है कि अगर कोई कहे कि अल्लाह एक है, लेकिन एक कहते हुए वो एक में आदाद वाले एक का इरादा करे, फहाज़ा ला यजूज़, असलन जायज नहीं है खुदा के लिए। क्यों? ले अन्नमाला सानिया लहू ला यदखुलु फी बाबिल आदाद, क्योंकि जिसका असलन कोई सानी ना हो वो आदाद के बाब में दाखिल हो ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं असलन उसके लिए। अमा तरा अन्नहू कफरा मन काला इन्नहू सालिसु सलासा या कफरा, क्या तुमने नहीं देखा कुरान में कि कुरान ने उस शख्स को काफिर कहा है कि जिसने ये अकीदा रखा है कि खुदा तीनों में से तीसरा है। यानी दो शख्स अगर मौजूद हों तो हम जो कहते हैं कि खुदा है, तो इसका मतलब है कि हम दो हैं, खुदा अगर हमारे साथ मिल जाए तो वो तीन हो जाएगा। जो ये अकीदा रखता है तो वो क्या है? काफिर है। बस खुदा को दो के साथ अगर मिलाएं तो ये कुल्लन तीन बनते हैं और उसको आदाद में शामिल कर लें, कुफ्र है, कुरान ने ये कहा है। बस इमाम फरमाते हैं ये वहदत अददी खुदा से नफी है, नफी की गई है, ये दुरुस्त नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम के और भी बहुत सारे नूरानी जुमलात हैं, उसको मजीद बयान करने की जरूरत है क्योंकि मतलब इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो इसको इंशाल्लाह बाद वाले दर्स में कामिल करेंगे और इमाम के जितने भी इस मौरद में कलेमात नूरानियाम हैं उनको हम पढ़ेंगे और उसको वजाहत करेंगे ताकि मतलब मजीद वाज और रोशन हो जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।